अवसाक है, काम के वास्ते अकर्मता है, और प्रमाद। प्रमाद वो कि जो न कर दे, जो काम को करना करने, जो काम की अवहेलना करना, तिरस्कार करना, ये सब प्रमाद। तो इन सब को मृत्यु के समान समझ के इनका एकदम सर्वथा त्याग करना, स्वरूप से ही त्याग कर देना। दुर्गों का, दुराचारों का, दुर्विष्णों का और आलस्य प्रमाद भोग इन सब का, और समझो कि दुखों का, कलेशों का, इन सब का एकदम समझो कि स्वरूप से ही त्याग कर देना। तो ये सब बातों को रोज ख्याल कर लेने कि हमारा समय किस काम के मन व्यतीत हो रहा है। ईश्वर की भक्ति, ज्ञान, वैराग और देवी संपदा के मन हमारा समय बीतता है तो बहुत ही ठीक है, पर बीतना ही चाहिए, क्यों नहीं बीते इस काम में, एक क्षण का भी क्यों विलंब हो रहे। शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, अचानक हार्ट फेल हो गई कि मनुष्य की मृत्यु क्षण में हो जाती है। तो इन्हें अच्छे अच्छे जो कामों को तो अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना, संग्रह करना, और इससे जो विपरीत है दुर्गुण दुराचार पिताजी, उनको मृत्यु के समान समझ करके, विष के समान समझ करके उसका एकदम त्याग कर देना, उपेक्षा कर देनी कहीं। हवेल ना कर दे। इस प्रकार से हम इसके दृष्टा साक्षी होकर के देखते रहे तो हमारे में उत्तम गुण आचरणों का, इस भक्ति का संग्रह हो सकता है, और दुर्गुण दुराचार, दुर्व्यसन, प्रमाद, आलस, इनका त्याग हो सकता है। तो इससे हमारे समय का सुधार हो सकता है, नहीं तो ये जो दुष्ट जो है, हमारे सब शत्रु जो हमारा पतन करने वाले हैं, ये हमको धोखा दे करके और हमारे घर के मां प्रवेश कर जाते हैं, और हमारा जो असली जो धन है आत्म विषय का, उसको लूट लेते हैं, जो चोर और डाकों के समान है। तो इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, इन विषय में दृष्टि डालना चाहिए, ये सिद्धांत बना लेना चाहिए। जो सेवनीय है, पालनीय जो जितने जो है, अपना जो कर्तव्य उसका तो अधिक से अधिक पालन करना, और जो त्याग करने जो योग जो है उनका एक कतई एकदम त्याग कर दे। और ये समझना चाहिए कि ये जो दुर्गुण दुराचार आदि का जो त्याग, सदगुण सेवाचार का जो सेवन, ये जो कार्य हमारे द्वारा जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, सब करने कराने वाले भगवान हैं। तो इस प्रकार का भाव रखने से भगवान पर बोझा पड़ जाता है, और भगवान से मदद तो मिलती है और विशेष मदद मिलने लग जाती है, और अपने हृदय के वहां घमंड या अहंकार, अभिमान, इनको गुंजाश नहीं रहते, ये भी दुर्गुण ही हैं। और ये समझना चाहिए कि जो पालनीय जो धारण करने के योग जो देवी संपदा के जो लक्षण हैं, ये तो बहुत ही सुगम है, क्योंकि लाभ की चीज है, थोड़ा विचार करने से बहुत दामी और लाभ की चीज है, तो इनका सेवन सहज में हो सके है। उसमें इस प्रकार अपने श्रद्धा होने से, उच्च भाव होने से इनका सेवन जो है सो सहज में हो सके। इनका सेवन प्रत्यक्ष के मां, साधन काल के मां भी अमृत के समान है, और परिणाम के मां भी अमृत के समान है। और संसार के जितने जो विषय भोग हैं, ये आरंभ के वहां अमृत के समान प्रतीत होते हैं, किंतु उनका नतीजा जो है परिणाम के वहां बहुत ही खराब है। और जो कि दुर्गुण दुराचार जो है ये तो बहुत से ऐसे हैं कि जो आरंभ के वहां भी इसके समान है, अंत में भी इसके समान है। और तमोगुण को लेकर के जो जितने विषय हैं वे तो एक प्रकार से थी आरंभ में अंत में बांधने वाले, जकड़ने वाले हैं और महान हमारे हानि कर हैं। दूसरी बात यह कही जाती है कि अब हम लोग यहां से अपने अपने घर के ऊपर शीघ्र जाने वाले हैं, कोई दो दिन में, कोई पांच सात दिन में, तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां जो है जो बातें सुनी और सुन रहे हैं और भविष्य में सुनने का काम पड़े, तो इस सत्संग की बातों को हृदय के वहां खूब याद रखना चाहिए कि घर पर जाकर के इसका प्रचार करना है। लोगों के वहां प्रचार करने के उद्देश्य से जो बात सुनी जावे तो अधिक याद रहती है। प्रचार अपने में भी करना है और संसार में भी करना है। अपने में तो एक नंबर और संसार के वहां दो नंबर। जो पुरुष अपने में इन सबका प्रचार करता है, माने इन सब बातों को धारण करता है, वही संसार में प्रचार कर सकता है। खुद जो नहीं करता उसका दुनिया पर असर नहीं पड़ता। तो मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि प्रथम अपने आप को सुधारें और फिर संसार में अपने भावों का प्रचार करें। जो मनुष्य दूसरों को शिक्षा की बात कहता है, खुद उसका पालन नहीं करता, उनकी बातों का न तो दूसरों पर असर होता है और न उसे संसार के वहां विशेष लाभ होता है, और न खुद के ही लाभ होता है। इसी प्रकार से थी जैसे कल्याण पत्र है और गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, रामायण, गीता, महाभारत, भागवत आदि जितने जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं और जितने और जो पुस्तकें हैं वो भी शास्त्र के आधार पर ही समझो कि लिखी गई हैं। उन पुस्तकों का जो भाव है उद्देश्य है उनका प्रचार करना और उन पुस्तकों का भी प्रचार करना, कल्याण मासिक पत्र इसका भी प्रचार करना, जिससे अधिक से अधिक गायक संसार के मां बढ़े। इस वक्त गीता प्रेस के मां जितनी मशीनें हैं उसमें अधिकांश मशीनें 16 घंटा चलती है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि 24 घंटा चले, किंतु एक प्रकार से 16 की जगह 8 घंटा चलने का प्रस्ताव आता है। क्यों कि पुस्तकें जितनी छपाई जाती है वो उतना प्रचार नहीं होकर स्टॉक बढ़ता जाता है, तभी यह सवाल पैदा होता है। इतने कम दामों में पुस्तकें बिक करके भी यदि उसका प्रचार पाछा पड़े तो हमारे लिए बहुत ही दुख की और लज्जा की बात है। हम लोग सब जीते बैठे हैं और उनके रहते हुए कल्याण के ग्राहक घटे हैं, या पुस्तकें जो है उनकी मांग कम आवे तो हमारे लिए शर्म की बात है। भाषा टीका गीता आगे 10 रुपयों के बीच के वहां कोई लिख करके नहीं देता था, वे आज 10 पैसा के बीच के वहां भाषा टीका गीता मिले, इससे और कम दाम क्या हो सकता है। तुलसीकृत रामायण 12 नाम में मिले, छपाई भी अच्छी कागज भी अच्छे, तो इससे और कम दाम क्या हो सकता है। तो इस प्रकार दृष्टि डाल करके हम लोगों का सबका कर्तव्य हो जाता है इसका खूब जोरों से प्रचार करना। देश में जैसे गांवों का ह्रास देकर के ये भाव होता है कि हमारे देश में गोधन की वृद्धि होनी चाहिए, इसी प्रकार से थी जो धार्मिक जो मासिक पत्र कल्याण है उसके विषय में भी वही भाव होना चाहिए कि हमारे ये देश की चीज इसका खूब जोरों से प्रचार होना चाहिए। जैसे हमारी संस्कृत जो देव भाषा है उसको कायम रखने के लिए प्रचार करने के लिए भी वैसी भावना होनी चाहिए। इसी प्रकार से थी हमारी धार्मिक जो पुस्तक है उसके विषय में ऐसा भाव होना चाहिए कि इनकी खूब वृद्धि और इनका प्रचार। समझो कि नित्य फरमान जो छपते हैं तो रोज लाख 1.25 लाख फरमान सब प्रकार की पुस्तकों को लेकर ऐसा छपते हैं, और त्यागत है उसके बीच के वहां 2.5 लाख, तो डबल हम काम कर सकते हैं कि ग्राहक यदि डबल हो जाए। तो इसके लिए सभी माता बहनों को और भाइयों को अपने देशों के बीच में अपने अपने शहरों में खूब प्रचार करना चाहिए, बल्कि झोला लेकर उसमें पुस्तकें डाल ले में और एक दो कल्याण ले ले में, और जैसे फेरी करने वाले कपड़ा बेचते हैं, चूर्ण बेचते हैं, खूमचा बेचते हैं, ऐसे हम लोग पुस्तकों को बेचे। इस प्रकार का ये निष्काम भाव से हम काम करें तो ये भगवान का ही काम है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। चोरी जारी समझो कि झूठ कपट बेईमानी करें तो उसमें शर्म की बात है, ये तो हमारे लिए गौरव की बात है, उत्साह की बात है, ये तो एक बड़ी सेवा है, भगवान की सेवा है। साधारण सेवा करने से भी आत्मा की शुद्धि होती है, फिर बड़ी सेवा की तो बात ही क्या है। साधारण सेवा यह कि मनुष्यों को शारीरिक सुख पहुंचाया जाए, खाने पीने का, ऐश आराम का, भोगों का, संसारिक सुख आराम दिया जाए, या कोई भाई आवे उनकी खातिरी की जा, आराम दिया जाए, तो ये शारीरिक सुख है। यहाँ अपने भवन की सफाई की जाए तो ये शारीरिक सुख है। इस सुख को भी हम देवे लोगों को निष्काम भाव से, तो आत्मा का सुधार और उद्धार हो सकता है। तो हरेक प्रकार से लोगों को सुख पहुंचाना, लौकिक सुख माने शारीरिक सुख भी और अध्यात्म विषय का सुख भी, तो वो अध्यात्म विषय का जो सुख पहुंचाना है वो लोगों की परम सेवा है, और ये लौकिक जो सुख है ये सेवा है। जो आदमी मरने को जा रहा है उसको कथा कीर्तन सुनावे तो ये पारमार्थिक सेवा है, उसको टिकी सेवा है। इसी प्रकार से हम सूक्ष्मता से विचार करके देखें तो जन्म मरण की बीमारी से सभी बीमार हैं, तो इन बीमारों को एक प्रकार से अध्यात्म दृष्टि की बात सुनाई जा तो ये भी एक परम अपने अलौकिक सेवा है। महात्मा लोग जो है नीति की, ज्ञान की, धर्म की, सदाचार की, सब उनकी बातों को सुना करके के और उनको धर्मात्मा बना देते हैं, महात्मा बना देते हैं, और उनका जीवन उज्जवल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और वो शुद्ध हुआ जीवन मुक्ति को देने वाला होता है। तो हम लोगों को अपने सब प्रकार से उन्नति करनी चाहिए, सब प्रकार से हम लोगों को अपनी उन्नति करनी चाहिए, जिसमें सबसे निम्न श्रेणी की उन्नति शारीरिक उन्नति है, किंतु वो भी हमारे अध्यात्म विषय में लाभदायक होने के कारण से हमको शारीरिक उन्नति भी करनी चाहिए। दूसरी जो उन्नति है वो इंद्रियिक उन्नति है, इंद्रियों की उन्नति करनी, वे शरीर के सब अंग हैं, और उससे भी और उनके दर्जे की उन्नति जो है वो एक प्रकार से मानसिक उन्नति है, मन विषय की उन्नति करनी, और उससे भी और ज्यादा उनके दर्जे की उन्नति जो है वो बौद्धिक उन्नति है कि अपने बुद्धि की उन्नति करनी। तो अपने शरीर में ये चार विभाग करके और अपनी उन्नति करनी चाहिए। शारीरिक उन्नति वो है कि हमारा शरीर का जो स्वास्थ्य ठीक बना रहे, कोई बीमारी न हुए, और शरीर का संगठन ठीक होवे, और शरीर के मां बल बढ़े, ऐसे पदार्थों का हम सेवन करें तो सात्विक भोजन के सेवन से ये सब बात होती है। आयु सप्तबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सात्विक भोजन का जहां लक्षण लिखा है वहां ये बात आई है, आयु सप्तबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए कि जिससे आयु बढ़े। ये समझना चाहिए कि जितनी आयु हमको प्राण से मिली है वो तो है ही, किंतु और भी हम बढ़ा सकते हैं। मनुष्य जन्म की हमारे को जो आयु मिली है वो तो पूर्व के सुकृत के ही प्रभाव से मिली है, और हम इस जन्म में सुकृत करके उसका फल आयु चाहना तो हमको आयु मिल सकती है। और सत्र जो है अंतकरण, इसकी वृद्धि, इसकी उन्नति, आरोग्यता, जो शरीर की जो बीमारी है उनका जो अभाव है वो आरोग्यता है, सुख है, और शरीर के बीच के मां प्रीति का बढ़ना, इस प्रकार के पदार्थों का जो सेवन है वो सात्विक है। सात्विक पदार्थों का सेवन सात्विक पुरुष किया करते हैं, तो ये हमारी शारीरिक उन्नति है, शरीर विषय की उन्नति। शारीरिक उन्नति शारीरिक तप से भी होती है, उसे साथ साथ में पारमार्थिक उन्नति भी होती है। शरीर का जो तप है, शरीर से हम तप करें तो शरीर के और भीतर के बाहर के सब जो पाप जल कर भस्म हो जाते हैं, बाहर भीतर से शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है तप के प्रभाव से। तप यह बतलाया शरीर का कि देव जिस गुरु पर आगे पूजन अंग सोच मार दू और ब्रह्मचर्य में हिस्सा होता है सारी रंग तप उच्च थे। ये शरीर संबंधी तप ऐसा कहा गया, माने शरीर का एक तप है, शरीर का एक कर्तव्य है। तो शरीर से हमको क्या करना चाहिए कि देव जिस गुरु पर आगे पूजनम, पहली बात तो यह है, इसमें पांच बात है। तो पहली बात यह है, देवता जो है और ब्राह्मण और गुरु माने जो हमारे पद में या समझो बुद्धि में ज्ञान में किसी भी प्रकार से हमारे से जो बड़े हैं उनका पूजन, और प्राग जो ज्ञानवान है महात्मा पुरुष है उनका पूजन, यानी उनका सत्कार करना, सेवा करना, आदर करना, यही पूजन है। सोच माने सोचाचार और सदाचार, शरीर को साफ सुथरा रखना ये सोचाचार है, और उत्तम शरीर से व्यवहार करना ये सदाचार है। तो ये शरीर का ऐसा तप है, एक तो बड़ों को नमस्कार करना, उनकी सेवा पूजा करना एक बात, दूसरी बात पवित्रता, शरीर की पवित्रता, तीसरी बात आज हमारा जो बर्ताव है उसमें ऐंठ नहीं होनी चाहिए, सरल बर्ताव होना चाहिए, भीतर के भाव के अनुसार ही बार की क्रिया होनी चाहिए, नहीं तो वो दम कहा जाएगा, पाखंड कहा जाएगा। और अहिंसा किंचित मात्र कभी किसी की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए, किंचित मात्र भी हिंसा किसी जीव की या प्राणी की हमको किसी काल के वहां कभी नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन, सब प्रकार से अपने बीजी की रक्षा करना, बीजी की रक्षा से ही शरीर की रक्षा होती है, और शरीर की रक्षा से ही हम शरीर के द्वारा साधन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए शारीरिक उन्नति करनी चाहिए, शारीरिक उन्नति के वहां ये सब बातें आ जाती है। तो ये संक्षेप से आपको मैंने बताया है कि यह शारीरिक उन्नति है, और इंद्रिय उन्नति होती है इंद्रियों की उन्नति करनी, इंद्रियों की उन्नति करना तो उनकी विशेष शक्ति हो जाती है देखने की सुनने की, पिताजी की जो शक्तियां हैं ये इंद्रियां दिव्य होने से दूर देश की बात सुनती है, दूर देश की बात दिखती है, जैसे दूरबीन से दिखे ऐसे नेत्रों से दिखती है दूर देश की बात। तो इंद्रियां जो है उनके मां जो रोग है उसको नष्ट करना, और इंद्रियों की शक्ति बढ़ानी और इंद्रियों को शुद्ध बनाना। हम एक आंख से थी पर स्त्री को भोग बुद्धि से देखते हैं तो इससे आंख हमारी दूषित होती है, और मातृभाव से देखते हैं तो हमारी आंख शुद्ध होती है। तो इंद्रियों के द्वारा हम पवित्र कर्म करेंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, और अपवित्र पाप कर्म करेंगे तो उसे इंद्रियां दूषित हो जाएंगी। तो इंद्रियों की सब प्रकार से हमको उन्नति करनी चाहिए, जैसे वाणी की उन्नति के लिए वाणी का तप बतलाया गया है, कैसा वचन बोलना चाहिए वाणी के द्वारा, अनुद्वेग करंग वाक्यं सत्यं प्रिय हितं ते स्वाध्याया वचनं ते वाङ्मयं तपुच्यते। ये वाणी संबंधी तप है कि ऐसा वचन बोलना चाहिए वाणी से किसी को उद्वेग न हो। वाणी के द्वारा समझो कि जो हम शब्द बोले तो उद्वेग कारक न हो, अश्लील शब्द न बोले, गंदे शब्द न बोले, तो कैसे बोले कि सत्य वचन बोले। सत्य उसको कहते हैं कि जो जैसी बात हमने सोची समझी सुनी है वैसी कहें, न अधिक कहें न कम कहें, वो एक प्रकार से थी सत है। और प्रिय वचन कहें, सत तो हो और प्रिय भी हो, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। सत भी हो और प्रिय हो, ऐसे वचन बोलने चाहिए। मनु जी कहते हैं, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्य न प्रियम अनितंग न प्रियम बुरियात देश्य धर्म सनातन। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न बुरियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय जो वचन है चाहे सत्य भी हो नहीं बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। अनितंग न प्रियम बुरियात, वचन तो बड़े मीठे लगते हैं पर है मिथ्या, ऐसे वचन भी नहीं बोलने चाहिए। यह सनातन धर्म है। तो वाणी को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए सत्य और प्रिय वचन बोलने चाहिए और हित की बात कहनी चाहिए, नहीं तो मौन ही रहना क्या है। मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। सत्य भी प्रिय और हित के वचन होने चाहिए। और वाणी से क्या करना चाहिए कि स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से अध्ययन का जो अभ्यास है ये वाणी संबंधी तप है, वाणी का तप है, वाणी का कर्तव्य है। इससे वाणी शुद्ध होती है, वाणी के मां बल बढ़ जाता है। वो वाणी के द्वारा किसी को श्राप दे देता है तो वो बात सत्य हो जाती है, किसी को वरदान दे देता है तो वो बात सत्य हो जाती है। अपने को किसी को श्राप देना नहीं है, किंतु शक्ति बढ़ा करके रखनी है समय के ऊपर काम आ सके। जैसे तैरना जो है ये अच्छा है, किंतु ज्यादा उस तैरने को काम में नहीं लाना चाहिए। वो विद्या ही सीख करके रखनी चाहिए, जो कभी एक प्रकार से हम डूबते हुए हो तो अपने प्राणों को बचा ले या दूसरों के प्राणों को भी बचा सके। इसी प्रकार से हरेक प्रकार की विद्या सीखनी चाहिए और समय पड़ने पर उसको काम में लेना चाहिए। तो वाणी में जब तेज और बल बढ़ जाता है, ओज बढ़ जाता है, तो वो वाणी के द्वारा वाणी का प्रयोग करके जो चालस से कर सकता है। ऋषियों के मां वाणी की सिद्धि थी तब के प्रभाव से, तो वे जो चाहते थे कर लेते थे। तो वो ही शक्ति हम लोगों के वहां होनी चाहिए, होती है वाणी के तप से। जैसे वाणी की बात मैंने कही तो वाणी का प्रयोग करने की, वाणी एक खास चीज है इंद्रियों के बीच के मां, इसी प्रकार से हम हमारी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। हाथ का जो प्रयोग है तो दूसरों के उपकार में, दान देने में, सेवा करने में, जग करने में, पूजा करने में, इस काम में हाथों का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे हमारे कान है तो हित की और तथ्य की बात सुनने में कानों का प्रयोग करना चाहिए। और नेत्रों का जो प्रयोग है, जैसे पुस्तकों के पढ़ने में नेत्रों का प्रयोग करना, अच्छे पुरुषों के दर्शन करने में, महात्माओं के दर्शन करने में, मंदिरों के वहां भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के बीच के वहां, इस प्रकार से अच्छे कामों के वहां नेत्रों की दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए।